देखिए भाई आगे सबक, फल अदलु मस्दर मबनियुल मफ़ऊली ऐ कौनु लिस्मि मादूलन खुरूजुहु ऐ खुरूजु लिस्मि ऐ कौनुहु मुखरजन अन सीगतिहिल असलियति ऐ अन सूरतिहिल लति यक्तज़िल अस्लु वल क़ाइदतु अन यकून ज़ालिकल इस्मु अलैहा। गुज़श्ता सबक में गैर मुनसरिफ का बयान चल रहा था और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि गैर मुनसरिफ का हुक्म यह है कि उस पर न कसरा आता है और न तनवीन आती है, और गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ करना यानी मुनसरिफ पढ़ना भी जायज है जरूरत की वजह से या तनासुब की वजह से। तो इस पर इश्काल हुआ था कि वह यजूजु सरफूहू, कि गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ पढ़ना जायज है, और आगे दो वजहें जिक्र हुई थी, लि जरूरती औलि तनासुब, जरूरत की वजह से या तनासुब की वजह से, और जरूरत से मुराद है जरूरत शेरी, और जरूरत शेरी की वजह से तो गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना जायज नहीं होता बल्कि वाजिब होता है, क्योंकि उसके बगैर शेर का वजन टूट जाता है। ऊपर कहा वह यजूज, जायज है उसको मुनसरिफ पढ़ना, और आगे ले जरूरत से पता चला कि उसका पढ़ना जरूरी है, तो जरूरी जो हुआ वो तो जायज के अंदर दाखिल नहीं होगा। जायज का तो माना क्या समझ में आता है कि जिसका करना न करना बराबर हो, यानी उसका करना जरूरी न हो भाई। तो साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि ये यजूजू जो है ला यमतनियो के माना में है, यानी यजूजू यहां युमकिनों के माना में है, मुमकिन है, उसकी सर्फ भी गैर मुनसरिफ की सर्फ भी मुमकिन है भाई। तो इम्कान आ गया, और इम्कान दो किस्म पर है, एक इम्कान आम एक इम्कान खास। इम्कान आम कहते हैं जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, यानी जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं है। मसलन एक है वजूद और एक है अदम, एक है वजूद और एक है अदम। जब वजूद का इम्कान जिक्र किया जाए कि यह चीज हो सकती है, तो इसकी जानिब मुखालिफ क्या? आदम। मालूम हुआ आदम जरूरी नहीं, आदम जरूरी नहीं, और यह जो वजूद है यह चाहे जरूरी हो या ना हो दोनों इसके अंदर आ गए, बस आदम जरूरी नहीं है। तो इसको इम्कान आम कहते हैं भाई, जिसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है, और दो जानिबें कौन कौन सी है मैंने बतला दिया, एक है वजूद एक है आदम। वजूद जिसमें एक चीज के होने का जिक्र हो, और आदम जिसमें एक चीज के न होने का जिक्र हो। मसलन मैं कहता हूं हो सकता है जैद आ जाए, देखो इसमें आने का जिक्र है, वजूद का जिक्र है, और एक है मैं कहता हूं हो सकता है जैद ना आए, देखो इसमें ना आने का जिक्र है, यानी आदम का जिक्र है। तो वजूद और आदम ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जहां वजूद होगा वहां आदम नहीं, जहां आदम है वहां वजूद नहीं, दोनों में से एक चीज होगी भाई, यानी कजिया या मुजिबा होगा या सालिबा होगा। अगर कजिया मुजिबा हो जिसमें एक चीज का दूसरी चीज के लिए इस बात होता है कि मसलन जैद आलिम है, तो देखो इसमें ईजाब है, इसमें वजूद का जिक्र है, एक चीज के लिए दूसरी चीज का वजूद साबित है भाई। और एक है कि जैद आलिम नहीं है, यह कजिया सालिबा है, तो यहां आदम का जिक्र हो रहा है। तो बहरहाल इम्कान दो किस्म पर है, एक इम्कान आम और एक इम्कान खास। इम्कान आम में जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है, और इम्कान खास में दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, यानी होना भी जरूरी नहीं और न होना भी जरूरी नहीं। और फिर यह इम्कान आम दो किस्म पर है, एक इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद और एक इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल आदम। इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद, जो मुकैद हो वजूद की जानिब, यानी जिसमें होने का जिक्र हो, और इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल आदम, जो आदम के साथ आदम की जानिब में मुकैद हो, यानी जिसमें न होने का जिक्र हो भाई। तो इम्कान आम जब मुकैद भी जानिबिल वजूद हो तो वह लायमतनियो के माना में होता है, किस माना में? लायमतनियो यानी आदम जरूरी नहीं, तो आदम जरूरी नहीं और बाकी वजूद चाहे जरूरी हो या ना हो दोनों इसमें दाखिल हो गए। तो इसको इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद कहते हैं और इसको लायमतनियों से ताबीर करते हैं। और दूसरा इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल आदम है और उसको ला यजीबू से ताबीर करते हैं। ला यजीबू से जिसमें न होना जिक्र होता है, जब न होना जिक्र हुआ तो मालूम हुआ होना जरूरी नहीं, होना जरूरी, जब होना जरूरी नहीं है तो न होना दोनों आ गए, चाहे जरूरी हो या ना हो दोनों उसके अंदर आ गए। तो यहां पर भी बतला दिया वह यजूजू से क्या मुराद है, ला यमतनियु मुराद है, यानी इम्कान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद मुराद है और इसको ला यमतनियु से ताबीर करते हैं। और इसके अंदर वजूद जिक्र होता है, क्या जिक्र होता है, वजूद जिक्र होता है, मुकैद भी जानिबिल वजूद है और मालूम हुआ इसकी जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं, यानी आदम जरूरी नहीं, तो इसमें आदम जरूरी नहीं होता, बाकी वजूद चाहे जरूरी हो या जरूरी ना हो दोनों आ गए। तो लिस जरूरत में जरूरी है और लिस तनासुब में जरूरी नहीं, दोनों इसके अंदर आ गए भाई। उसके बाद ये लिस जरूरत के बारे में हमने पढ़ा था भाई आखिरी सबक में, और इन्होंने आपको बतलाया था कि जरूरत से मुराद जरूरत शेयरी है भाई, और कभी यह जरूरत शेयरी होती है कि शेर के वजन को बरकरार रखने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा जाता है, और कभी रियायत काफिया की जरूरत की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा जाता है। और इन्होंने आपको बतलाया था कि जिस वक्त गैर मुनसरिफ शेर में वाक होता है तो बसा औकात उसके गैर मुनसरिफ होने की वजह से शेर के अंदर कसर वाके होती है, यानी उसका वजन टूट जाता है, उसको शेर के वजन से निकाल देता है, और कभी उसके अंदर जिहाफ वाके होता है और जिहाफ की वजह से वो सलासत से निकल जाता है। सलासत का माना मैंने बतलाया था रवानी, अशार के अंदर खास रवानी और तरन्नुम होता है भाई, खास रवानी जिसको जरा भी अल्लाह ने जौक दिया हो, बल्कि आम आदमी भी शेर के अंदर जो रवानी है, आम आदमी भी हर सलीम तबा आदमी शेर के अंदर रवानी और सलासत को महसूस करता है कि इसके अंदर खास एक तरन्नुम है, खास रवानी है और उसके पढ़ने का एक खास लुत्फ है भाई, तो शेर के अंदर खास सलासत होती है। लेकिन अगर गैर मुनसरिफ जो है कभी वो आ जाए तो उसकी वजह से शेर की रवानी मुतासिर होती है, शेर की रवानी मुतासिर होती है, यानी शेर के अंदर जिहाफ वाके होता है। जिहाफ मैंने बतलाया भाई, जिहाफ शेर के अंदर मखसूस जगहों पर मखसूस किस्म की तब्दीली करने को जिहाफ कहते हैं, और ये तीन किस्म की होती है। कभी कभार क्या किया जाता है, साकिन को हजफ कर लेते हैं, कभी सिर्फ हरकत को हजफ करते हैं, और कभी मुतहर्रिक को हजफ कर लेते हैं। कितनी सूरतें, तीन, कभी साकिन को हजफ करते हैं, कभी सिर्फ हरकत को हजफ करते हैं, और कभी मुतहर्रिक को हजफ करते हैं। तो जब मुतहर्रिक को हजफ किया मालूम हुआ वह हर्फ भी हजफ और उसकी हरकत भी हजफ, उसमें दोनों चीजें आ गई। फिर सुनो, तीन सूरतें, साकिन में सिर्फ एक हर्फ हजफ हुआ, जब हरकत हजफ की तो उसमें सिर्फ हरकत हजफ हुई, हर्फ हजफ नहीं हुआ, और जब हर्फ मुतहर्रिक को हजफ किया तो वो हर्फ भी हजफ और उसकी हरकत भी हजफ हो गई। तो याद रखिए जो जिहाफ है इसकी वजह से शेर के वजन में रवानी बरकरार नहीं रहती, उमूमन जिहाफ की वजह से शेर के अंदर वो रवानी और वो सलासत और वो तरन्नुम बाकी नहीं रहता भाई। मैंने बताया शेर के मखसूस औजान होते हैं, एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो शेर का वजन टूट जाता है, लेकिन आप देखते हैं उन्हीं औजान पर हर शायर अपनी अपनी बात करता है, हर शायर एक शायर एक चीज के बारे में शेर कहता है, दूसरा दूसरी चीज के बारे में, तीसरा तीसरी चीज के बारे में, तो बाज औकात शेर बनाते हुए शायर को कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलता कि जो पूरा शेर का वजन बरकरार रखा जा सके, तो वहां पर उनके लिए जिहाफ की गुंजाइश होती है, वो मामूली सा रद्दो बदल कर सकते हैं वजन में, लेकिन खास तरीके से, हर तरीके से नहीं, खास तरीके से उनको मामूली से रद्दो बदल की उसमें गुंजाइश होती है, जिसकी वजह से शेर का वजन बदलता जरूर है लेकिन शेर का वजन टूटता नहीं, खराब नहीं होता, उसकी वजह से सलासत और रवानी में कमी आ जाती है, अलबत्ता शेर का वजन फिर भी बरकरार होता है। अगर वो उसकी गुंजाइश उसको न देते तो फिर शायर के लिए वहां कोई लफ्ज उसको मिल ही नहीं रहा था जो मुनासिब लफ्ज वो वहां लेकर आता। तो उसके लिए गोया यूं समझें कुछ उसको रुखसत मिल जाती है कि वजन में मामूली सी वो रद्दो बदल के साथ भी कह सकता है, लेकिन वो रद्दो बदल भी मैंने बताया खास किस्म का होता है जिससे वजन थोड़ा बदलता है, टूटता नहीं है, खराब नहीं होता। तो इसको ज़िहाफ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ज़िहाफ कहते हैं। तो पहले की मिसाल कि जिसमें गैर मुनसरिफ को गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता तो शेर का वजन टूट जाता, तो शेर के वजन को टूटने से बचाने की जरूरत की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। जैसे सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। मैंने बताया ये हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का शेर है भाई। तो फिर उलमा का इसमें इख्तिलाफ, बाज फरमाते हैं ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का शेर है और बाज कहते हैं ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का शेर है जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पढ़ा भाई। वह अम्मसानी, और दूसरे की मिसाल जिसमें ज़िहाफ से बचने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया, अगर गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता तो शेर में ज़िहाफ वाके होता। तो ये दूसरे की मिसाल है जिसमें ज़िहाफ से बचने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। जैसे अईद जिक्र नौमान लना, ये मकाम इस्तिशहाद जो है नौमान है भाई नौमान, और ये नौमान इसमें अलिफ नून ज़ायदतान है और ये गैर मुनसरिफ है लेकिन ज़िहाफ से बचने के लिए इसको मुनसरिफ पढ़ा गया। अईद जिक्र नौमान लना, और मैंने बताया ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का नाम है भाई। तो शायर, तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह का ये शेर है, वो फरमाते हैं अईद जिक्र नौमान लना इन दिक्रहू वल मिस्कुमा कररतहू यतज़व्वउ, कि हमारे लिए नौमान का जिक्र दोहराइए, यानी इमाम आजम अबू हनीफा का, इन दिक्रहू हुवल मिस्कु, कि बेशक उनका जिक्र जो है वो ऐस मुश्क खुशबू है, मा कररतहू यतज़व्वउ, जिस कदर उसको बार बार दोहराओगे उतनी ही उसकी खुशबू महकती जाएगी, फैलती जाएगी भाई। फइन्नहु लौ फुतिहा नूनु नौमान मिन गैरी जी, यहां से आगे ये बयान कर रहे हैं कि यहां नौमान जो गैर मुनसरिफ था उसको मुनसरिफ पढ़ा गया सिर्फ ज़िहाफ से बचने के लिए, अगर इसको गैर मुनसरिफ भी पढ़ा जाता तो शेर में ज़िहाफ वाके हो जाता। क्या वाके होता? ज़िहाफ वाके होता, अलबत्ता शेर का वजन फिर भी बरकरार रहता, शेर का वजन तो बरकरार रहता लेकिन ज़िहाफ की वजह से शेर में सलासत ना रहती, रवानी ना रहती, उसमें वो तरन्नुम ना रहता। तो ज़िहाफ से बचने के लिए शायर ने नौमान गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा भाई। फिर एतराज यह हुआ कि आपने हमें बतला दिया कि ज़िहाफ शेर में आ जाए तो उससे शेर का वजन नहीं टूटता, शेर का वजन नहीं टूटता, तो फिर जब शेर का वजन बरकरार है तो फिर तो ज़िहाफ अगर आ भी जाए तो कोई हरज नहीं। मालूम हुआ ज़िहाफ से बचना वाजिब नहीं है भाई, क्योंकि शेर का वजन ठीक रहता है ज़िहाफ के बावजूद, तो मालूम हुआ ज़िहाफ से बचना वाजिब नहीं। तो आपने इसको लिस जरूरत के तहत कैसे जिक्र कर दिया? लिस जरूरत में तो वो चीज जिक्र हो जिसका करना जरूरी है और ज़िहाफ से बचना तो जरूरी नहीं, तो लिस जरूरत कैसे इस ज़िहाफ को शामिल हुई भाई? तो उसका जवाब दिया कि भाई बाज़ ज़िहाफात से बचना जरूरी होता है जब उससे बचा जा सके, क्योंकि ज़िहाफ की वजह से शेर की में सलासत जो है उसमें कमी आ रही थी, सलासत से वो शेर निकल रहा था। तो बाज़ औक़ात जब ज़िहाफ से बचना मुमकिन हो तो शुआरा के नजदीक वहां बचना जरूरी होता है, तो ये भी लिस जरूरत के तहत दाखिल है। बात समझ में आ गई। वह अम्मा जरूरतुल वाक़ियतु लिरियायतिल काफियती जी, मैंने बतलाया था काफिया जो है शेर के आखिर में जो वजन आता है उसको काफिया कहते हैं। कसीदे के पहले शेर में जो काफिया आता है शायर इख्तिताम कसीदा तक इस काफिये का ख्याल रखता है, इसका ख्याल रखना जरूरी है भाई। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि इमराउल कैस जो है अपने मुअल्लक़े में कहता है किफान नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिली बिसिक्तिल लिवा बैन दखूली फहाव मली। तो देखो ये हाव मली ये है काफिया, हाव मली वजन जो शेर के आखिर में आ रहा है ये क्या है? काफिया। और इसी पर वो आखिर तक चलते रहेगा इमराउल कैस, पूरे कसीदे के अंदर यह हाव मली वजन बरकरार रखेगा। اور حملی وزن سے مراد یہ ہے کہ یعنی متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن. چنانچہ اگلا شعر ہے بھائی, فتوز حفل مقرات لم یعفر اسمها نمان سجت حامین جنوب و شم علی. دیکھا حوم علی شم علی. تیسرا شعر دیکھ لیں بھائی, ترا بعر الارام فی عرصاتها وقیعانها کانها حب فلفلی کانها حب فلفلی. دیکھو حوم علی شم علی فلفلی. آپ کہیں گے نہیں بھائی فلفلی میں تو حرکتیں الگ ہیں. بھائی بات وزن شعری کی چل رہی ہے, وزن شعری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے, ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے, حرکتیں ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے. حوملی دیکھو ہا متحرک اور واو ساکن, فلفلی دیکھو اس میں فا متحرک اور لام ساکن, پھر حوملی میم پر حرکت اور آگے لام مکسور, اور فلفلی اس کے آخر میں بھی فا متحرک اور آگے لام مکسور ہے. تو وزن شعری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے, ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے, حرکتوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی. تو اس کو رعایت قافیہ کہتے ہیں. اور یہ جو شعر کے آخر میں حرف آتا ہے اس کو حرف روی کہتے ہیں, حرف روی. اور یہ حرف روی جو ہے اسی کی طرف قصیدے کی نسبت کی جاتی ہے. جیسے اس کے آخر میں لام آیا تھا تو اس کو کہیں گے قصیدہ لامیہ, اگر آخر میں تا آ جائے تو کہیں گے قصیدتن تائیتن, اور اگر آخر میں میم آ جائے تو قصیدتن میمیتن, اگر نون آ جائے تو قصیدتن نونیتن. تو اسی حرف روی جو بالکل آخر میں آیا جیسے یہاں لام ہے, حوم علی شم علی فلفلی, دیکھو آخر میں لام آ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں حرف روی, حرف روی بھائی. اور شاعر تمام پورے قصیدے میں اس کا اہتمام کرتا ہے کہ ہر شعر کے آخر میں یہی حرف آئے. جیسے یہاں پر لام مکسور آیا تو پورے قصیدے کے اندر آخر میں لام مکسور لے کر آیا شاعر بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا کہ کبھی کبھار غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے مناسبت کی وجہ سے, تاکہ دو کلموں میں مناسبت حاصل ہو جائے. ایک ہے غیر منصرف اور ایک ہے منصرف, دو کلمے اکٹھے آ گئے. اب غیر منصرف جو ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور منصرف پر تنوین آئے گی, تو دونوں میں مناسبت نہیں معلوم ہوگی. مناسبت بھی عرب کے ہاں بڑی ضروری ہے کلمات کے اندر. تو چنانچہ وہ منصرف کی رعایت کرتے ہوئے غیر منصرف پر بھی کسرا اور تنوین پڑھ دیتے ہیں, جیسے سلاسلم و اغلالا. سلاسل دیکھو یہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اغلالن لفظ تھا وہ منصرف تھا, اس پر تنوین آ رہی تھی, تو سلاسلن کو بھی وہی حکم دے دیا گیا اور اس پر بھی تنوین لائی گئی. تو سلاسلم و اغلالا یہ دونوں کی مثال ہے, یعنی وہ اسم جس کو مناسبت کی وجہ سے منصرف پڑا گیا وہ اسم بھی ہے اس میں, اور جس اسم کی وجہ سے اس کو منصرف پڑا گیا وہ بھی اس میں ہے. تو یہ دونوں کی مثال ہے بھائی. اور پھر آپ کو صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ علتیں جو دو علتوں کے قائم مقام ہیں وہ دو ہیں, ایک جمع اور ایک الف تانیث, تانیث کے دو الف, کیونکہ یہ دونوں علتیں مقرر ہیں, ان میں تکرار ہے, تو ان کی وجہ سے دو فرعیتیں آ گئیں. اشکال ہوتا تھا نا کہ ایک علت دو کے قائم مقام کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ علت کی وجہ سے اسم میں فرعیت آتی ہے, اور فعل کے اندر دو فرعیتیں ہیں تو اسم کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی, فعل کے ساتھ. لیکن مشابہت کب آئے گی, جب کم از کم دو فرعیتیں آئیں تو پھر فعل کی طرح ہو جائے گا اسم, کیونکہ فعل میں بھی دو فرعیتیں ہیں. تو جب ایک سبب دو کے قائم مقام ہے تو اسم میں تو ایک فرعیت آئی اس کی وجہ سے, اور ایک فرعیت کی وجہ سے اس کی مشابہت تو فعل کے ساتھ پوری نہیں ہے. تو جواب دیا کہ یہ جو علتیں ہیں, یہ دو علتیں جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں, ان میں تکرار ہے بھائی. یہ جمع منتحل جموع یہ عموماً دوسرے نمبر پر آتی ہے, دوسرے درجے میں, جیسے قلب کی جمع آتی ہے اکلب, اور پھر اس اکلب کی جمع آتی ہے اکالب بھائی. تو معلوم ہوا گویا دو مرتبہ جمع آ گئی, جمع کا تکرار آ گیا, تو یہ دو فرعیتوں کے قائم مقام ہو گئی. اسی طرح تانیث کے جو دو الف ہیں, الف مقصورہ اور ممدودہ, وہ بھی دو تانیث کے درجے میں ہے, دو تانیث کے درجے میں. کس طرح؟ ایک تو وہ الف تانیث والا, वो एक अलिफ तानीस है, एक उसकी वजह से फरियत आई, दूसरा इनमें लुजूम तानीस होता है, यानी इस अलिफ को उस कलीमे के साथ ही वजा किया गया है, ये अलिफ उस कलीमे से जुदा होता ही नहीं। तो एक तानीस है और एक लुजूम तानीस है, तानीस इस कलीमे के साथ लाजिम है, तो इस लुजूम तानीस को एक और तानीस के दर्जे में उतार लिया गया, तो गोया दो तानीसें आ गई, तो गोया तानीस का तकरार आ गया। जब तानीस का तकरार आया तो एक तानीस की वजह से फरियत आती थी, तो दो तानीसों की वजह से दो फरियतें आ गई, जैसे जमा के अंदर दो जमाओं की वजह से दो फरियतें आ गई, तो ये इसकी मुनासिबत आ गई, मुशाबहत आ गई फेल के साथ, इसलिए ये लफ्ज क्या हो जाएगा, कलिमा गैर मुनसरिफ हो जाएगा। और फिर आपको यह भी बतलाया था कि भाई ता को दो सबबों के कायम मकाम क्यों नहीं किया, तो बतलाया कि ये जो ता है ये वजा के एतबार से कलिमे के साथ लाजिम नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ मुजक्कर मुअन्नस में फर्क करने के लिए साथ मिलाई जाती है, वही जारिबुन है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसी तरह रखेंगे और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करो तो फर्क करने के लिए साथ क्या मिला देंगे, ताय मरबूता यानी गोलता साथ मिला देंगे, तो ये जो ताय तानीस है ये कलिमे के साथ लाजिम नहीं होती, ये सिर्फ मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करने के लिए लाई जाती है। और कभी ये ता भी लाजिम हो जाती है जब उस लफ्ज को किसी का नाम बना दिया जाए, जैसे काइमतुन के साथ ताय तानीस जुड़ी, लेकिन ये तो इसके साथ लाजिम नहीं है, लेकिन फिर इसको किसी का नाम बना दिया गया, और जब नाम बनाया यानी आलम बनाया तो आलम में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा अब यह ता इससे जुदा नहीं हो सकती। तो कहते हैं भाई यहां भी अगरचे लुजूम तो आ गया, लेकिन वो जो वज़ह अव्वल में जैसे लुजूम के अंदर कुव्वत थी वो कुव्वत यहां पर नहीं, वो जो कलिमा को वज़ह अव्वल में अलिफ को जोड़ा गया था उस कलिमे के साथ वो लुजूम बड़ा कवी था और ये उस दर्जे का कवी नहीं है, लिहाजा ये उसके दर्जे में नहीं। या यूं कहें कि एतबार वज़ह अव्वल का है, वज़ह अव्वल में जो लाजिम हो तानीस वाली अलामत उसका एतबार है, और ये जो अलम बनाया गया ये तो वज़ह सानी है, एक लफ्ज एक माना के लिए वजा था पहले, फिर किसी का नाम रखा गया तो गोया ये दोबारा इसके लिए वजा कर लिया गया, तो वज़ह सानी का एतबार नहीं है बल्कि किसका एतबार है, वज़ह अव्वल का, और वज़ह अव्वल के एतबार से तो ये ता लाजिम नहीं थी, लिहाजा ये दो सबबों के कायम मकाम नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं फल अदलु मस्दरुन मबनीयुन लिल मफ़ऊली अय कौनु लिस्म मादूलन खुरूजुहु अय खुरूजु लिस्म अय कौनुहु मुखरजन अन सीगतिहिल असलिया। पहले मतन देख लीजिए भाई, कहते हैं फल अदलु खुरूजुहु अन सीगतिहिल असलियति, अदल जो है खुरूजुहु अय खुरूजु लिस्म इसम का निकलना, अनसीगतिहिल असलियति अपने सीगाए असलिया से, इसम का अपने सीगाए असलिया से निकलना यह अदल कहलाता है, इसम का अपने सीगाए असलिया से निकलना यह अदल कहलाता है। भाई सीगाए असलिया किसे कहते हैं, भाई सीगाए असलिया वो है जिसका कानून और जाबिता तकाजा कर रहा हो, कानून और जाबता तकाजा कर रहा है कि इस लफ्ज को इस तरह होना चाहिए, लेकिन उसको फेर कर एक नई शक्ल दे दी गई, इसको क्या कहते हैं, अदल। मसलन जैसे उमर की असल है, उलमाए नह फरमाते हैं आमिरुन, और आमिरुन देखो फाइलुन सिफत का सीगा है, इसमें फाइल का सीगा है, तो मुजर्रद के सीगों से इसमें फाइल किस वजन पर आता है, फाइलुन वजन पर आता है, और आमिरुन भी इसी वजन पर है, लेकिन इसको फेर कर एक नया वजन बना लिया गया, एक नई सूरत दे दी गई, उमर देखो नई सूरत दे दी गई, तो लफ्ज को फेर दिया गया किससे, अपने सीगाए असलिया कौन सा, जिसका कानून और जाब्ता तकाजा कर रहा था। कानून और जाब्ता क्या था कि इसमें फाइल जो है सुलासी मुजर्रद से फाइल वजन पर आता है, और आमिर भी उसी फाइल वजन पर था, कानून के मुताबिक था, फिर इसको फेर कर एक नई सूरत दे दी गई, तो इसको अदल कहते हैं कि इसम का अपने सीगाए असलिया से निकलना, यानी यूं कहो इसम का अपनी कानूनी शक्ल से निकलकर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेना, यह क्या है, अदल है। देखिए भाई कहते हैं फल अदलु मस्दरुन मबनीयुन लिल मफ़ऊली अय कौनुल इस्मि मादूला। फल अदलु आदल जो है मस्दर उन बतला दिया कि आदल ये मस्दर है भाई, कौन सा सिगा है, मस्दर है। और मस्दर उन मबनी युन लिल मफूल, मस्दर मबनी लिल मफूल है। क्या माना मैं बतला चुका हूं आपको, मबनी लिल मफूल होने का क्या माना, यानी ये मस्दर मजहूल है, मस्दर मजहूल है। भाई देखो जैसे फेले मारूफ के लिए फाइल चाहिए और फेले मजहूल के लिए नाए फाइल चाहिए, फेल कभी मारूफ होता है और कभी मजहूल। इसी तरह ये जो मस्तर है ये भी कभी मस्तर मारूफ होता है और कभी मजहूल होता है। जैसे देखो जर्ब, जर्ब का माना पिटाई करना भी और इसका माना पिटाई किए जाना भी, यानी पिटाई होना भी, जर्ब का माना पिटाई करना भी और जर्ब का माना पिटाई होना भी। यूं याद रखो कि जैसे फेल मारूफ और मजहूल होता है इसी तरह मस्तर भी मारूफ और मजहूल होता है। जैसे जर्ब का माना पिटाई करना भी और जर्ब का माना पिटाई होना भी, पिटाई होना भी यानी पिटाई किए जाना भी। और इसी तरह शुर्ब, शुर्ब का माना पीना भी और शुर्ब का माना पिया जाना भी। और अकल, अकल का माना खाना खाना भी और अकल का माना खाने को खाया जाना भी। भाई तो उर्दू में तो देखो मुख्तलिफ है, पीना अलग पिया जाना अलग, पिटाई करना अलग और पिटाई किए जाना अलग, लेकिन अरबी में वही मस्तर मारूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है और वही मस्तर मजहूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। चुनांचे आप गर्दानों में पढ़ते हैं जरब यजरिबु जरबन फहुआ जारिबुन, देखो ये सरफे सगीर है और सरफे सगीर में सिर्फ सरफे कबीर की तरफ इशारा किया जाता है, जाराबा सिर्फ एक सीगा लाए, बाकी पूरी गर्दान आप खुद पढ़ लीजिएगा, माजी की 14 सीगे हैं भाई, हमने इशारा कर दिया, जाराबा इस तरह गर्दान शुरू होगी माजी मारूफ की। यजरिबु मुजारे के 14 सीगे हैं मुजारे मारूफ के, लेकिन सिर्फ एक सीगा यजरिबु ले आए, पूरी गर्दान की तरफ इशारा कर दिया कि पहला सीगा यजरिबु है, बाकी गर्दान आप इसी वजन पर खुद बना लें, खुद पढ़ लें। फिर जरा बयाजिबु जारबन, ये मस्तर लाया गया, फिर उसके बाद फहुआ जारिबुन, इसमें फाइल का वजन भी बतला दिया कि बाकी गर्दान आप खुद पढ़ लें। उसके बाद वह जूरीबा फेले मजहूल ले आए, फेले मजहूल के 14 सीगे हैं लेकिन एक ही सीगा ले आए, इशारा कर दिया कि जूरीबा इस तरह होगी फेले मजहूल की गर्दान जूरीबा और बाकी गर्दान आप खुद पढ़ लीजिए। फिर यो जराबो फेले मजहूल मुजारे ले आए, उसमें भी पूरी गर्दान की तरफ इशारा कर दिया और आगे फिर जरबन आया, फिर जरबन आया, तो इश्काल होता है कि तो सरफे सगीर है, इसमें तो एक एक सीगा लाकर पूरी गर्दान की तरफ इशारा किया जाता है, तो फिर जरबन मस्तर एक दफा आ गया था तो दोबारा इसको क्यों जिक्र किया गया, एक लफ्ज को बेकार लिया यहां। तो जवाब यह कि नहीं भाई, बुजुर्गों का उलमा का कोई एक काम भी बेकार नहीं, उसमें कोई ना कोई बड़ी गहरी बात या गहरा नुक्ता होता है, वो अलग बात है आपका जहन उस तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये जो दूसरा जरबन लाए इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि यह मस्तर मजहूल है, वो मस्दर जो पहले गुजरा था वो मारूफ था क्योंकि वो फेल मारूफ के बाद आया था, जराबा यजरिबो जरबन, और ये जुरीबा युजरबु जरबन, ये जरबन जो है फेल मजहूल के बाद आया है, ये मस्दर मजहूल है। और देखो जराबा यजरिबु जरबन, इस जरबन को मंसूब पड़ा क्योंकि ये मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक किसे कहते हैं, वो मस्तर जो माकबल फेल के माना में हो, तो यहां भी जरबन से पहले यजरिबु का फेल था इसलिए इस पर नसब पड़ा भाई। तो देखा एक जरबन है वो मस्तर मारूफ है और दूसरा मस्तर जो है जरबन वो मस्तर मजहूल है, और नीज ये नुक्ता बतला दिया कि अरबी में मस्तर मारूफ और मजहूल एक ही वजन है दोनों का, वही जरबन मारूफ मस्तर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और वही जरबन मजहूल मस्तर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब वो मौके के मुताबिक आप खुद गौर करेंगे कि कहां पर मस्तर कौन से माना में इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैंने आपको एक और बात भी बतलाई थी कि ये जो मस्तर है, मस्तर है, कभी ये इसमें फाइल के माना में भी आ जाता है और कभी इसमें मफूल के माना में भी। जैसे मैं कहता हूं जैदुन आदलुन, तो ये आदलुन मस्तर है और ये किस माना में है? आदिल, यानी इसमें फाइल के माना में है। तो इसी तरह मस्तर कभी इसमें फाइल के माना में इस्तेमाल होता है और कभी इसमें मफूल के माना में इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी इबारत में इस तरह आ जाता है जैसे यहां आया फल आदलो मस्तरुन मबनी लिल मफूल, ये मस्तर मबनी लिल मफूल है। मबनी ले तोलबा से पूछें भाई इसका क्या माना, वो इसका तर्जमा करते हैं कि मालूम हुआ ये मस्तर जो है इसमें मफूल के माना में है। मबनी लिल मफूल, ये मस्तर किस माना में है? इसमें मफूल के माना में, यानी आदल बमाने मादूल के है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है भाई, यहां सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मस्तर मबनी लिल मफूल है। भाई देखो ये जो फेल मारूफ होता है ना, इसको बनाया गया है, बनाया अबनी का माना बनाना, इसको बनाया गया है कि फाइल की तरफ इसकी निस्बत की जाएगी, इसका इस्नाद किसकी तरफ किया जाएगा? फाइल की तरफ। तो ये जो फेले मारूफ होता है उसको कहते हैं मबनी युन लिल फाइली, कि इसको फाइल के लिए बनाया गया है। कभी किसी जगह किताब में इबारत आती है तो मुसन्निफ को ख्याल होता है कि मैंने तो जराबा लिखा है, कोई इसको जुरीबा ना पड़ जाए, कोई जुरीबा ना पड़ जाए, तो वो आगे लिख देता है मबनी युन लिल फाइली, कि ये जो जराबा है ये मबनी लिल फाइल है, यानी इसको फाइल के लिए बनाया गया है, यानी ये फेले मारूफ है, ये फेले मारूफ है, इसको मजहूल ना पढ़ना। तो फेल के आगे वो लिख देते हैं, तो फेल जो है कभी उसको फाइल के लिए बनाया जाता है जब वो मारूफ हो, और फेले मजहूल का इस्नाद किसकी तरफ किया जाता है? नायबुल फाइल यानी मफूल की तरफ। तो उसके बारे में कहते हैं कि ये फेल जो है मबनी युन लिल मफूल, इसको बनाया गया है किसके लिए? मफूल के लिए, यानी मफूल की तरफ इसकी निस्बत की जाती है। तो जब किताब के अंदर ये आ जाए मस्दरुन मबनी युन लिल मफूल, तो इसका सिर्फ इतना माना है कि यह मस्तर मजहूल है, ये मस्तर मजहूल है। और कभी आएगा मस्तरुन मबनी युन लिल फाइल, उसका सिर्फ यह माना है कि यह मस्तर मारूफ है, मबनी लिल फाइल है, यानी मस्तर मारूफ है। बाकी कि ये इसमें फाइल या इसमें मफूल के माना में है ये यहां बयान नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बताया गया ये मस्तर मारूफ है या मजहूल है। हां वो अलग बात है, मस्तर कभी इसमें फाइल इसमें मफूल के माना में भी आता है, लेकिन इसमें फाइल के माना में वो मस्तर आएगा जो मबनी लिल फाइल होगा, यानी मस्तर मारूफ। तवज्जो है? तो मस्तर का मबनी लिल फाइल होना इसमें सिर्फ क्या बयान हुआ कि ये मस्तर मारूफ है, फिर आगे ये इसमें फाइल के माना में है या नहीं वो अलग बात है, वो यहां पर जिक्र नहीं। लेकिन अगर किसी मस्तर के बारे में ये कह दिया जाए ये मस्तर इसमें फाइल के माना में है, जैसे आदलुन बमाने आदिल के है, तो आप समझ जाएं कि ये जो आदलुन है ये मस्तर मारूफ है। मातिन ने तो उस किताब वाला तो सिर्फ क्या बताएगा आपको कि आदल किस माना में है, आदिल के माना में। तो दो बातें समझ जाना उससे, एक तो ये कि इसमें फाइल के माना में है, ये बात तो लफ्जों से समझ में आ रही है, साथ एक और बात भी समझ जाना कि ये मस्तर मबनी लिल फाइल है यानी मारूफ है, क्योंकि इसमें फाइल के माने में मस्तर मारूफ होता है, मस्तर मजहूल नहीं। और जब कह दिया जाए कि यह मस्तर इसमें मफूल के माना में है, किस माना में, तो साथ ही एक और बात भी समझ जाना, क्या कि ये मस्तर मजहूल है, क्योंकि मस्तर मजहूल जो है वो इसमें मफूल के माना में होता है, वो इसमें फाइल के माना में नहीं। बात समझ में आ गई, एक है मस्तर का मारूफ और मजहूल होना, एक है मस्तर का इसमें फाइल या इसमें मफूल के माना में होना, तो ये अलग चीज है कि इसमें फाइल या इसमें मफूल के माना में है। तो जब कहा जाए मस्तर मबनी लिल फाइल है, सिर्फ क्या पता चला कि ये मस्दर मारूफ है, और जब कहा जाए मस्दर मबनी लिल मफूल है तो सिर्फ क्या पता चला ये मस्दर मजहूल है, बस इतना पता चला। आगे आगे इसमें फाइल है इसमें मफूल के माना में है या नहीं वो यहां पर जिक्र नहीं है। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि ये मस्दर इसमें फाइल के माना में है, तो फिर आपको दो बातों का पता चल गया, क्या? एक तो यह कि इसमें फाइल के माना में है, दूसरा यह भी पता चल गया कि यह मस्दर मबनी लिल फाइल है, क्योंकि जो मस्दर मारूफ होता है वो ही इसमें फाइल के माना में होता है, और मस्दर मजहूल जो है वो इसमें मफूल के माना में होता है। तो यहां सिर्फ क्या बताया गया, मस्दर उन मबनी युन लिल मफूल के, मस्दर मबनी लिल मफूल है। ايكون الاسم معدولا يعني اسم کا معدول ہونا, اسم کا معدول ہونا. یہ صاحب جامی فرما رہے ہیں. عدل کے آگے انہوں نے ذکر کیا مصدر مبنی للمفعول, ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ مصدر مجهول ہے, اور پھر یہ عدل کس معنی میں ہے. دیکھو عدل کا معنی ہے پھیرنا, اور مصدر مجهول کیا ہوگا, پھیرا جانا. توجہ ہے, تو معلوم ہوا یہ پھیرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پھیرے جانے کے معنی میں ہے, پھیرا جانا. اور مراد کیا ہے, کون الاسم معدولا, اسم کا معدول ہونا, اسم کا معدول ہونا. دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے, توجہ سے بھائی. اشکال یہ کہ عدل کی تعریف خروجہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. عدل کی تعریف کس سے کی جا رہی ہے, خروجہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور عدل ہے فعل متعدی, عدل کا معنی ہے پھیرنا. تو کلیمے کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا یہ کس کا کام ہے, متکلم کا. توجہ ہے, متکلم ایک لفظ کو ایک صورت سے کس کی طرف پھیر دے گا, دوسری صورت کی طرف. تو معلوم ہوا یہ عدل متکلم کی صفت ہے, عدل متکلم کی صفت ہے. جیسے میں کہتا ہوں ضربا زید عمرن, کس نے پٹائی کی عمر کی, زید نے. معلوم ہوا یہ ضرب کس کی صفت ہے, زید کی صفت ہے, پٹائی اس نے کی ہے. تو یہاں بھی عدل کا معنی پھیرنا, اور پھیرنے والا کون ہوتا ہے, متکلم, جو کلام کر رہا ہے, جو عربی زبان پر تکلم کر رہا ہے, عدل اس کی صفت ہے. اور خروجہ اسم کا نکلنا, یہ تو کلمہ کی صفت ہے. کلمہ کیا ہوگا, اسم کیا ہوگا, اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلے گا. توجہ ہے, تو عدل صفت ہوئی کس کی, متکلم کی, اور خروجہ صفت ہوئی کس کی, کلمہ کی, اسم کی. وہ اسم کی صفت ہوئی, تو لہذا دونوں میں تو مطابقت ہی نہیں ہے. عدل سے پتا چلا یہ صفت کس کی, متکلم کی. آگے جب تعریف شروع کی پتا کیا چلا یہ صفت کس کی, کلمہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. تو معرف سے کیا پتا چلا, معرف کون ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے, عدل کی. اور تعریف کیا ہے, خروجہ کے ساتھ. معرف سے کیا پتا چلا یہ صفت کس کی ہے, متکلم کی. اور تعریف سے کیا پتا چلا یہ صفت کس کی ہے, کلمہ کی. دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے بھائی. اشکال سمجھ میں آیا. دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ عدل یہ ہے فعل متعدی, پھیرنا. دیکھو کسی کلمے کو پھیرے گا, کوئی متکلم کیا کرے گا, کلمے کو پھیرے گا. ضربا زید عمرن, ضربا کیا ہے, فعل متعدی, زید نے پٹائی کی. معلوم ہو کوئی نہ کوئی مضروب ہے. تو یہاں بھی متکلم نے پھیرا ہے, معلوم ہو کوئی کلمہ ہے جس کو اس نے پھیرا ہے. تو عدل فعل متعدی, اور خروج کا معنی ہے نکلنا, یہ تو ہے فعل لازم. خروج کا کیا معنی, نکلنا. خرج زید, زید نکلا. مجھے بتائیے کوئی مفعول کی ضرورت ہے نہیں, لیکن عدل زید, زید نے پھیرا, کوئی معدول چاہیے یا نہیں چاہیے. جیسے ضربا زید, زید نے پٹائی کی, کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے, مضروب چاہیے. تو عدل فعل متعدی ہے اور خروج فعل لازم ہے. تو فعل متعدی کی تعریف کرنا فعل لازم کے ساتھ یہ صحیح نہیں. تو دو اشکال ہو گئے. پہلا اشکال کیا, کہ عدل صفت کس کی, متکلم کی. اور آگے جو تفسیر آپ نے بیان کی اس کی, خروجہ کے ساتھ, وہ تو صفت کس کی ہے, کلمہ کی ہے. تو دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے, آپ عدل کی تعریف خروج کے ساتھ نہیں کر سکتے. دوسرا اشکال یہ ہوا کہ عدل ہے فعل متعدی اور خروج کیا ہے, فعل لازم ہے. آپ فعل متعدی کی تفسیر فعل لازم کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو بتلا دیا مصنف نے کہ جو عدل ہے یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے بھائی, مصدر مبنی للمفعول ہے. ای کون الاسم معدولا یعنی اسم کا معدول ہونا, اسم کا جی, یہ کس کی صفت ہے, اسم کا معدول ہونا, یہ اسم کی صفت ہے. خروجہ بھی کس کی صفت تھی, اسم کی. اور معدول ہونا یہ بھی کس کی صفت ہے, اسم کی صفت ہے. اسم معدول ہوگا یا معدول نہیں ہوگا. جواب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر عدل کیا ہے, مصدر مبنی للمفعول ہے, اور یہ کس معنی میں ہے, اسم کا معدول ہونا. تو دیکھو یہ تو معدول ہونا تو اسم کی صفت ہے بھائی, اور خروجہ یہ بھی کس کی صفت ہے, اسم کی صفت. تو دونوں میں اب تعارض نہ رہا بھائی, اشکال ختم ہوا. دوسرا اشکال کیا تھا کہ عدل فعل متعدی ہے اور خروج کیا ہے, فعل لازم ہے. تو جواب دیا, ای کون الاسم معدولا, اسم کا معدول ہونا. دیکھو فعل لازم جیسا ترجمہ کر دیا اس کا, اسم کا معدول ہونا, اسم کا معدول ہونا. جیسے خروجہ کا کیا معنی تھا؟ اسم کا نکلنا. اور اس کا کیا معنی ہے؟ اسم کا معدول ہونا. تو اس کا ترجمہ کس طریقے پر کر دیا؟ فعل لازم کے طریقے پر کر دیا کہ اس کا معنی یہاں ہے اسم کا معدول ہونا. دونوں اشکال ختم ہوئے, بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں فالعدل مصدر مبنی للمفعول. معدل جو ہے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے, یعنی ایسا مصدر ہے مبنی للمفعول جس کو مفعول کے لیے بنایا گیا ہے, یعنی مصدر مجھول ہے. ای کون الاسم معدولا, یعنی اسم کا معدول ہونا. خروجہ ای خروج الاسم, ضمیر کا مرجع بتلا دیا. خروجہ ای خروج الاسم, کیسے پڑھیں گے طلبا؟ پڑھتے ہیں خروج الاسم, نہیں بھائی خروج الاسم, لام کے نیچے زیر پڑھیں. اے خروج الاسم یعنی اسم کا نکلنا. بھائی اسم کا نکلنا کیا مانا؟ اے کون ہو مخرجان, یعنی اسم کا مخرج ہونا, نکالا ہوا ہونا. جیسے کیا تھا پیچھے؟ کون الاسم معدولا, اسم کا معدول ہونا. یہاں بھی خروج اسم سے کیا مراد ہے؟ کیا حاصل ہے معنی کیا ہے؟ اسم کا مخرج ہونا. وجہ یہ بھائی دیکھو, یہ جو عدل ہے اس میں اخراج کا اعتبار ضروری ہے. اسم کو ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت دینا, تو دیکھو اخراج ضروری ہے. ایک صورت سے صیغہ اصلیہ سے اخراج ہونا چاہیے نئی صورت کی طرف. تو عدل کی بنیاد ساری کس پر ہے؟ اس اخراج پر ہے. ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت دی ہے تو عدل ہے, اگر نہیں دی تو پھر عدل کہاں سے بھائی؟ تو عدل کی بنیاد کس پر ہے؟ اخراج پر ہے. اخراج ہوگا تو عدل ہے, اخراج نہیں تو عدل بھی نہیں. تو اسی لیے خروجہ کا حاصل معنی بیان کر دیا. اسم کا نکلنا مراد یہ ہے اسم کا مخرج ہونا, یعنی نکالا ہوا ہونا. اسم کا نکالا ہوا ہونا, تو یہ حاصل معنی بیان کر دیا. عن صیغته الاصلیہ, عن صیغته کی ہا ضمیر اسم کو راجع ہے, اس اسم کے صیغہ اصلیہ سے. اسم کا نکالا ہوا ہونا, اسم کا مخرج ہونا کس سے؟ اپنے صیغہ اصلیہ سے, اپنے صیغہ اصلیہ سے. تو دیکھو یہاں پر صیغته کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ اسم کو راجع ہے. توجہ ہے, اصلی صیغہ سے نکالنا. اور اصلی صیغے سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا تھا جس کا قانون اور ضابطہ تقاضا کر رہا ہو. جیسے عامر سے کیا بنا؟ عمر. قانون اور ضابطہ کیا تقاضا کر رہا تھا؟ کہ عامر وزن ہونا چاہیے. تو قانون جس کا تقاضا کر رہا تھا وہ ہے صیغہ اصلیہ, اس سے نکال لینا ایک نئی صورت دینا, یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اے عن صورت ہلتی, یہاں سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی صیغہ یاد رکھیے, صیغہ صورت اور مادے دونوں کا نام ہوتا ہے. صیغہ صورت اور مادے دونوں کا نام ہوتا ہے. زاربن کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل, اس میں مادہ بھی ہے اور صورت بھی ہے, پھر کہیں گے اس میں فاعل ہے. مضروبن کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول ہے, اس میں مادہ بھی ملحوظ ہے اور صورت بھی ملحوظ ہے بھائی. لیکن یہاں پر صیغہ سے مراد صرف صورت ہے بھائی. ای عن صورت ہی, دیکھو صورت کے ساتھ ترجمہ کیا, یعنی ایک اسم کو نکالا جائے اس کے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف. معلوم ہوا مادہ وہی رہے گا, صرف کیا بدلے گی؟ صورت بدلے گی, مادہ نہیں بدلے گا. توجہ ہے, مادہ نہیں بدلے گا. دیکھو عامرن سے کیا بنایا؟ عمر بنایا. مادہ وہی ہے عین میم را, تو مادہ نہیں بدلے گا. تو یہاں صیغہ اصلیہ سے نکالنے کا کیا معنی ہے؟ اس صورت سے نکال کر نئی صورت دے دینا, مادہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اے عن صورتہ التی یقتضی الاصل والقاعدہ, یعنی وہ صورت جس کا تقاضا اصل اور ضابطہ کر رہا ہو. کہ ان یکون ذالک الاسم علیہا, کہ اس اسم کو اس صورت پر ہونا چاہیے. یعنی وہ صورت کہ جس کا تقاضا اصل اور ضابطہ کر رہا ہے کہ اسم کو اس صورت پر ہونا چاہیے, تو اس صورت سے نکال دینا جس کا تقاضا ضابطہ کر رہا تھا. یہ ہے خروج الاسم عن صیغته الاصلیہ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا, پھر ترجمہ دیکھ لیں. ای عن صورته التی یقتضی الاصل والقاعدۃ ان یکون ذلک الاسم علیہا, یعنی وہ صورت جس کا تقاضا ضابطہ اور قاعدہ کر رہا ہو کہ اسم کو اس پر ہونا چاہیے, اس صورت سے اس کو نکالنا. ولا یخفا, یہاں سے تین چار اشکالات کے جواب دیں گے. بھائی آپ یہیں پر پوری بات سمجھ لیجئے. دیکھیے, اسم کو نکالنا صیغہ اصلیہ سے اشکال ہوتا ہے. آپ کی تعریف تو مشتقات کو بھی شامل ہو گئی. ضاربن کس سے بنا ہے؟ ضربن سے. مضروبن بھی کس سے بنا ہے؟ ضربن سے. تو دیکھا, یہاں ضاربن کو بھی اس کے صیغہ اصلیہ سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی گئی, مضروبن کو بھی اس کے صیغہ اصلیہ سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی گئی. تو لہذا ان میں بھی عدل کو ماننا چاہیے. ان میں بھی کیا آ گیا؟ عدل. جب ان میں ضاربن اور مضروبن میں عدل آ گیا تو یہ تو صفت کے صیغے ہیں, تو صفت بھی آ گئی, عدل بھی آ گیا, دو سبب آ گئے. لہذا ان کو غیر منصرف پڑھنا چاہیے, حالانکہ ان کو کوئی بھی غیر منصرف نہیں کہتا. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیا, کہتے ہیں دیکھو, ان صیغتی ہل اصلیہ, اس میں صیغہ کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہے اور یہ ہا ضمیر اسم کو راجع ہے. اسم کو اپنے صیغے سے نکالنا, اسم کو, اسم کا اپنے صیغے سے نکلنا. اور مجھے بتائیے, ضربن کون سا صیغہ ہے؟ مصدر ہے. ضاربن کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل. تو کیا ضاربن اور ضربن کا ایک معنی ہے؟ جی ایک معنی نہیں. میں نے آپ سے پوچھا ضربن کون سا صیغہ, آپ نے کیا کہا؟ مصدر. میں نے کہا ضاربن کون سا صیغہ, آپ نے کیا کہا؟ اس میں فاعل ہے. جب ضاربن اس میں فاعل ہے, معلوم ہوا ضاربن اس کا اپنا صیغہ نہیں ہے, وہ تو اور صیغہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا ضاربن کا اپنا صیغہ ہے ضاربن؟ کیا وہ بھی اس میں فاعل ہے؟ نہیں. اسی طرح میں نے پوچھا ضاربن کون سا صیغہ, آپ نے کیا کہا؟ مصدر. اور میں نے کہا مضروبن کون سا صیغہ, آپ نے کیا کہا؟ اس میں مفعول. تو کیا یہ جو ضاربن ہے یہ مضروبن کا اپنا صیغہ ہے, وہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے کوئی؟ نہیں. تو یاد رکھو, عدل میں معنی نہیں بدلتا, عدل میں صرف صورت بدلتی ہے. توجہ ہے؟ صورت بدلتی ہے. تو لہذا ضربن کا معنی اور, وہ مصدر ہے. ضاربن کا معنی اور, دیکھو معنی باقاعدہ بدل رہا ہے, حالانکہ عدل میں معنی نہیں بدلتا. بھائی تو جب صیغت ہی کہہ دیا اسم کا نکلنا اپنے صیغے سے, تو ضاربن یہ تو اپنے صیغے سے نہیں نکلا, یہ تو مصدر سے نکلا ہے بھائی, لہذا اس کو عدل نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے, دوسرا اشکال کہ بھائی کچھ اسم ایسے ہیں جن میں کبھی کوئی ایک حرف حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے کچھ اسم ایسے ہیں جن کا آخری حرف حذف کر لیا گیا, جیسے یدن اصل میں کیا تھا؟ یدبن. اور دمن اصل میں کیا تھا؟ دمون تھا. تو یہ تو محذوفت الاعجاز ہیں. میں نے بتایا تھا اعجاز جمع ہے عجوز کی, اور عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو. آپ گائے بیل بکری وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کے پچھلے دھڑ کو دیکھتے ہیں, اگر وہ گوشت سے پر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حیوان خوب موٹا تازہ ہے, اور اگر پچھلا دھڑ ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حیوان بڑا کمزور ہے بھائی. تو یہاں پر بھی کلمے کے اندر بھی جو آخری حصہ ہے وہ بھی عجوز کی طرح ہے. تو دیکھو یدون سے آخر میں وہ حذف ہوا, یہ اس کا عجوز ہے, اور دمون سے وہ حذف ہوا, یہ اس کا عجوز یعنی آخری دھڑ ہے. تو کبھی کبھار کلمے کے آخر سے کوئی حرف حذف کر لیا جاتا ہے, کبھی درمیان سے حذف کرتے ہیں, جیسے مقولن اس میں مفعول کا صیغہ ہے, یہ اصل میں کیا تھا؟ مقولن. توجہ ہے؟ مقولن اصل میں کیا تھا؟ مقولن. تو اس کے درمیان سے ایک حرف کو حذف کر لیا گیا, اور اسی طرح کبھی شروع سے ایک حرف حذف کر لیا جاتا ہے, جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا؟ وعدن تھا, پھر وہ کو حذف کر کے آخر میں کیا لے آئے؟ گولتا لے آئے بھائی, تو عیدتن ہوا. تو یہ جن سے کیا کیا جاتا ہے, ایک آدھ حرف کو حذف کر لیا جاتا ہے, تو ان کو بھی دیکھو اصل صورت سے نکال لیا گیا. کیا کیا گیا؟ یدن کو اصل صورت یدون سے نکال لیا گیا, ایک نئی صورت دے دی گئی. تو ان میں بھی کیا کہنا چاہیے؟ عدل کہنا چاہیے ان کو, کہ ان میں عدل ہوا ہے. مقولن میں بھی کیا کہنا چاہیے؟ عدل ہوا ہے. عیدتن میں بھی کیا کہنا چاہیے؟ عدل ہوا ہے. لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے بھائی کہ ان میں عدل ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی مراد اس سے یہ ہے کہ صرف صورت میں تبدیلی آئے مادے میں تبدیلی نہ آئے. یدعون اور دماون میں تو مادے کے اندر تبدیلی آ گئی, مادہ ہی حذف کر دیا گیا, مادہ برقرار رہنا چاہیے. عدل میں مادہ برقرار رہنا چاہیے. لہذا یدن اور دمن کا اعتراض بھی ختم, عدتن اور مقولن وغیرہ کا اعتراض بھی ختم ہوا, کیونکہ اس میں مادہ باقی نہیں بھائی. پھر اشکال ہوتا ہے, اشکال یہ ہوتا ہے کہ مغیرات قیاسیہ جو ہیں ان کے اندر بھی عدل کو ماننا چاہیے, ان کے اندر عدل کو ماننا چاہیے. مثلا مقولن, مقولن یہ اصل میں کیا تھا؟ مقولن. تو یہ ہے اس کا صیغہ اصلیہ, اصل صورت ہے. اس میں مفعول کا وزن کیا ہے ثلاثی مجرد میں؟ مفعولن, مقبولن, دیکھو اسی وزن پر ہے. پھر اس کو قوانین اور ضابطوں کے تحت کیا کیا گیا؟ مقبولن میں واو کی حرکت قاف کو دے دی گئی, توجہ ہے, واو کی حرکت قاف کو دے دی گئی. اب دو واو ساکن جمع ہوئے, اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا, اور اس میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں, تو ایک واو کو گرا دیا, توجہ ہے, تو کیا بن گیا؟ مقولن. اب کون سے واو کو گرایا؟ بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ جو زائد تھا اس کو گرایا, کیونکہ ایک اصلی ہے, اصلی کو نہیں گراتے بلکہ کس کو گراتے ہیں؟ زائد. تو مفعول ان کے اندر ایک جو واو زائد آ رہا تھا اس کو گرا دیا, تو کیا بن گیا؟ مقول. جبکہ بعض علماء نحو فرماتے ہیں نہیں, یہاں زائد کو نہیں گرانا, اصل کو گرانا ہے. کس کو بھائی؟ اصل کو کیوں گرانا ہے؟ زائد کو گراتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, یہ جو زائد آ رہا ہے یہ علامت ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مفعول ان میں یہ واو نہ آتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یہ کون سا صیغہ ہے اس میں مفعول کا. تو یہ واو اس میں مفعول کے صیغے کی علامت ہے, اور علامت کو نہیں گرایا جاتا, لہذا اصلی کو گرائیں گے یہاں پر. تو گویا دو گروہ ہو گئے, بعض کے نزدیک مقول ان میں جو واو گرا ہے وہ اصلی گرا ہے, جب واو اصلی گرا ہے تو معلوم ہوا مادہ باقی پورا نہ رہا, تو لہذا یہ بھی دمن اور یدن کی طرح کیا ہوا؟ نکل گیا, توجہ ہے. اور بعض کے نزدیک مادہ نہیں بدلا بلکہ زائد جو تھا وہ گرا ہے, مادہ ابھی بھی باقی ہے بھائی, مادہ ابھی بھی باقی ہے. تو یہ بھی عدل کے اندر داخل ہوا, یہ بھی کس میں داخل ہوا؟ عدل میں داخل ہوا. کس طرح داخل ہوا؟ کہ بھائی اصل قانون کیا تھا, صورت کیا ہونی چاہیے؟ مقولن ہونی چاہیے تھی, پھر آپ سے اس سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی مقولن, مادہ بھی باقی ہے, لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ عدل کہنا چاہیے. تو آپ کو بتائیں گے کہ بھائی جو نئی صورت دی ہو وہ قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. پہلی صورت تو قانون اور ضابطے کے مطابق تھی مقولن, دوسری قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. اور مقولن کی دوسری صورت بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ہے یا نہیں؟ قانون لگا کر باقاعدہ آپ نے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو گرایا ہے, تو مقولن سے کیا بن گیا؟ مقولن. پہلی صورت بھی قانون کے مطابق اور مقولن یہ بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ہے. قوانین اعلال وغیرہ کے قوانین لگائے یا نہیں لگائے آپ نے؟ تو یہ بھی قانون کے مطابق ہے. حالانکہ عدل میں دوسری صورت نئی صورت ہوتی ہے, وہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت نہیں ہوتی, لہذا یہ مغیرات قیاسیہ بھی نکل گئے. پھر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ کچھ صیغے جو شاذ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئے, کچھ شاذ جمعیں وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئے. جیسے قوسن, قوس کمان کو کہتے ہیں, تیر کمان بھائی. اس قوس کی جمع جو ہے اقوس آتی ہے, حمزہ قاف ووسین اقوس. حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جمع اقواس آنی چاہیے, اس کی جمع اقواس آنی چاہیے تھی. تو معلوم ہوا یہ اقوس جو جمع آئی یہ خلاف ضابطہ ہے, یہ خلاف ضابطہ ہے. معلوم ہوا, ادھر دیکھیے, معلوم ہوا قوس کی جمع پہلے بنائی گئی اقواس, اور وہ اقواس تو کیا تھی؟ قانون اور ضابطے کے مطابق. پھر اس اقواس سے کیا بنا لیا گیا؟ اقوس. اب یہ خلاف ضابطہ ہے, اب تو یہ آپ کی تاریخ میں داخل ہو گیا. آپ نے بھی ہمیں کیا کہا تھا؟ कि पहला सीगा कानून के मुताबिक हो दूसरे को कानून के मुताबिक नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा अभी अकवस खिलाफ कानून हो गया। पहले कौस से क्या बना? अकवास। फिर अकवास से क्या बना? अकवस। तो पहला सीगा जो बना वो कानून के मुताबिक बना, फाल उनकी जमा अफाल आती है भाई, बात समझ में आ। और फिर इसको निकाला गया, नई सूरत दी गई और वो खिलाफ कानून है। तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, हमें यह तस्लीम नहीं है कि कौस की जमा पहले अकवास लाई गई और फिर वहां से इससे अकवुस बनाई गई, बल्कि यहां इब्तिदाअन ही कौस की जमा अकवुस बना दी गई। इब्तिदाअन ही कौस की जमा क्या लाई गई? अकवुस लाई गई। लिहाजा यहां पहला सीगा कानून के मुताबिक और दूसरा खिलाफ कानून को, ऐसा नहीं है बल्कि इब्तिदाअन ही कौस की जमा अकवुस लाई गई, यानी खिलाफ कानून लाई गई। लिहाजा अब हम ये नहीं कह सकते कि ये अकवुस किससे निकला है? अकवास से। अगर ये कहेंगे तो फिर तो अदल में ये दाखिल होगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है भाई। अकवुस अकवास से नहीं बनी, बल्कि इब्तिदाअन कौस की जमा ही क्या लाई गई? अकवुस लाई गई। तो लिहाजा ये अदल की तारीफ में दाखिल नहीं। बात समझ में आ गई जी। देखिए भाई, कहते हैं वला यख्फा अन्ना सीगतल मस्तरी लैसत सीगतल मुश्तकाती, और ये बात मख्फी नहीं है कि मस्तर का जो सीगा है वो मुश्तकात का सीगा नहीं है। फबी इजाफति सीगति इला जमीर इस्मी, पस सीगा की इजाफत इसम की जमीर की तरफ करने से, खराजतिल मुश्तकात कुल्लुहा, तमाम मुश्तकात निकल गए। बात समझ में आई? बात क्या हुई थी कि सीगा की इजाफत है हाज अमीर की तरफ और हाज अमीर इसम को राजे है, इसम को निकालना अपने सीगे से, और जारिबुन जो जर्ब से बना है तो ये जर्ब जारिबुन का अपना सीगा नहीं, और इस तरह मजरूबन जर्ब से बना है तो ये जर्ब मजरूब का अपना सीगा नहीं, वो तो मस्दर है और ये इसमें मफूल या इसमें फाइल है, दोनों का सीगा ही अलग अलग है, और ये था कि अपने ही सीगा से निकले। बात समझ भी आ रही है कि नहीं? आगे देखिए, वह अनल मुतबादिर मिन खुरूजी अनसी गतिहिल असलियति अंतकून अल मादतु बाकियतन, और मुतबादिर, मुतबादिर का माना जो चीज जहन की तरफ सबकत करे, तो सीगा असलिया से निकलने से जहन में यह बात आती है कि मादे को बाकी होना चाहिए, किसको? मादा नहीं बदलना चाहिए, लिहाजा अस्माए महजूफतुल आजाज वगैरह का एतराज खत्म, क्योंकि उसमें मादा बाकी नहीं रहता। वह अनल मुतबादिरा, देखो ये अनल मुतबादिरा, ये इसका अतफ पीछे आया था ना, वला यख्फा अन्न सीगतल मस्तरी, ये अन्न सीगतल मस्तरी ये फाइल है वला यख्फा का। अन्ना क्या करता है? जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर उसको मुफरत के माना में कर देता है, तो ये फाइल बनेगा वला यख्फा का। आगे भी एक दो जगह और भी आएगा इसी तरह अन्नल मुतबादिरा, इसका अतफ भी उसी अन्न सीगतल मस्तर पर है, तो ये भी उसका फाइल बनेगा, यानी ये बात भी नकफी नहीं है कि अन्नल मुतबादिरा मिन खुरूजी अन सीगतिहिल असलियति, के इसम का सीगा असलिया से निकलना, इससे जो बात मुतबादिर होती है यानी जहन में फौरन आती है कि अंतकून अल मादतु बाकियतन व तगयुरु इन्नमा वकाफी सूरत फकत, के मादा बाकी होगा और तब्दीली सिर्फ उसकी सूरत में आई वाकई हुई होगी। फला यंतकिजु बिमा हुज़िफ़ा अन्हु बाज़ुल हुरूफ़ी, तो लिहाजा ये तारीफ नहीं टूटती उन इस्मों के जरिए जिनमें से बाज़ हुरूफ को क्या कर लिया जाए? हज़फ कर लिया जाए, चाहे शुरू में हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे आखिर में हो, तो उसके जरिए उनको लेकर तारीफ पर एतराज नहीं किया जा सकता। फिर तर्जमा देखिए, वह अनल मुतबादिरा मिन खुरूजी अन सीगतिहिल असलियति, और सीगा असलिया से इसम के निकलने से जो बात जहन में मुतबादिर होती है वो ये है कि अंतकून अल मादा तु बाकियतन, कि मादा जो है वो बाकी होगा। व तगैर इन्नमा वकाफ सूरत फकत, और जो तगैर हुआ है वो सिर्फ उसकी सूरत में होगा। फला यंतकिजु बिमा हुज़िफ़ा अन्हु बाज़ुल हुरूफ़ी, लिहाजा अदल की यह तारीफ टूटती नहीं है, यानी इस पर एतराज वारिद नहीं होता। बीमा उन इस्मों के जरिए कि हुज़िफ़ा अन्हु बाज़ुल हुरूफ़ी, जिनमें से बाज़ हुरूफ़ को हज़फ कर लिया गया हो, कल असमा इल महजूफत इल आजाजी, जैसे कि वो असमा जिनके आखिर को हजफ कर लिया गया हो, मिसलू यदिन व दमिन, जैसे कि यदिन और दमिन भाई। फइन्नल माद्दता लैसत बाकियतन फीहा, इसलिए क्योंकि इनके अंदर तो मादा बाकी नहीं है। व अन्न खुरूजहू, जी ये अब तीसरी बात, इसका अतफ भी उसी पर है और ये बात भी मख्फी नहीं है कि अन्न खुरूजहू अन सीगतिहिल असलियति, कि इसम का अपने सीगा से निकलना यस्तलजिमु दुखूलहू फी सीगतिन उखरा, इस ये मुस्तलजिम है कि उस वो इसम दाखिल हो जाए दूसरे सीगे में, यानी दूसरी सूरत में। अय मुगायरतिन लिल उला, ऐसी सूरत जो पहली सूरत के, आई मुगायर अतिन लिल उला, ऐसी सूरत जो पहली सूरत के मुगायर हो, नई सूरत भी आएगी। वला यबउदु अन युअतबरा, और ये बात भी बाईद नहीं है, अन युअतबरा मुगायरतु हा लहा, के एतबार किया जाए उस दूसरे सीगे का मुगायर होने का। मुगायरतु हा जमीर किसको राजे, दूसरे सीगे को, भाई पीछे आया था ना कि सीगा असलिया से निकलना इसके साथ लाजिम है कि इसम दाखिल होगा एक नए सीगे में, यानी एक नई सूरत में। तो एक है सीगा असलिया, एक है सीगा उखरा, नया सीगा, तवज्जो है, दूसरा सीगा। तो अब मुगायरती हा, यह हा जमीर आज है दूसरे सीगे को, कि वो दूसरा सीगा मुगायर होना चाहिए लहा उस सीगा असलिया से, ये दूसरा सीगा उस पहले सीगा से मुगायर होना चाहिए भाई। वला यबउदु अन युअतबरा मुगायरतुहा, और ये बात बाईद नहीं है कि एतबार किया जाए मुगायरतुहा उस दूसरे सीगे का मुगायर होना, मुख्तलिफ होना लहा उस सीगे असलिया से। फी कौनिहा गैर दाखिलतिन तहता असलिन व कायदतिन, इस बात में कि यह दाखिल ना हो किसी असल और कायदे के तहत। कहते हैं भाई देखिए, एक है सीगा असलिया, इस जब सीगा असलिया से इसम निकलेगा तो इसके साथ लाजिम है, मालूम हुआ कि एक नया सीगा आएगा, नई सूरत आएगी। तो सिर्फ सूरत ही नहीं आएगी बल्कि जैसे यह सूरत उस पहली सूरत से मुगायर है, इसी तरह यह बाई लिहाज भी मुगायर होगी कि वो पहली सूरत जाब्ते के मुताबिक थी और सानी के लिए कोई जाब्ता नहीं है, बाई एतबार भी इनमें क्या होगी, मुगायरत होगी। तो कहते हैं वला यबउदु अन युअतबरा मुगायरतुहा लहा, और यह बात बाईद नहीं है कि एतबार किया जाए कि वह दूसरा सीगा जो है वह मुगायर होना चाहिए सीगा असलिया से। किस चीज में मुगायर होना चाहिए, फी कौनिहा गैर दाखिलतिन तहता असलिन व कायदतिन, इस बात में कि यह जो दूसरा सीगा है यह दाखिल ना हो किसी असल और जाब्ते के तहत। कमा कानतिल उला, जैसे कि पहला दाखिल था किसी जाब्ते के तहत, तो जाब्ते के तहत होने के अंदर भी मुखालिफत होनी चाहिए। तो कहते हैं कमा कानतिल उला दाखिलतन तहतहू, जैसे कि पहला सीगा जो है वो एक जाब्ते के तहत दाखिल था। फखरजत अनहुल मुगैयरातुल कियासियतु, तो मुगैयरात कियासिया भी इससे निकल गए, मुगैयरात कियासिया भी इससे निकल गए। काला किससे बना है, कवाला से, जी कवाला भी कानून के मुताबिक, क्योंकि माजी किस वजन पर आती है, जाराबा, किस वजन पर, तो कवाला असल, फिर इस कवाला से क्या बना, काला, और यह भी कानून के मुताबिक है, नई सूरत आई, लेकिन इसमें भी वह मुतहरिक मकबल फतहा उसको किससे बदलते हैं, अलिफ से। तो पहली सूरत भी जाब्ते के मुताबिक कवाला न सारा, देखो वही वजन है या नहीं, वो क्योंकि माजी बाबे नसारा में माजी नासारा, यानी तीनों हर्फ पर फतहा होता है, तो पहली सूरत भी जाब्ते के मुताबिक और काला जो दूसरी सूरत बनी वो भी जाब्ते के मुताबिक। लिहाजा ये जो मुगैयरात कियासिया हैं, ये कियासी तब्दीलियां जो आप अबवाब में सीगों में करते हैं वो भी इससे निकल गए, इनको अदल नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें पहली सूरत के साथ साथ दूसरी सूरत भी कानून के मुताबिक है भाई। तो ये तमाम मुगैयरात कियासियां निकल गए इसे। व अमल मुगैयरात शाज़तु फला नुसल्लिमु, जी मुगैयरात शाज़ा का एतराज होता था, किस तरह, कौस की जमा क्या आई, अकवास, फिर अकवास से क्या बना, नया सीगा क्या बना लिया, अखवस। तो अकवास तो जाब्ते के मुताबिक थी, कौस की जमा जाब्ते के मुताबिक आनी भी क्या चाहिए, अकवास। लेकिन उससे जो नई सूरत बनाई गई अकवस, वो खिलाफ जाब्ता है, लिहाजा ये तो तब तारीफ में दाखिल हो रहा है, ये तो कानून के मुताबिक नहीं है दूसरी सूरत जो है। तो उसका भी जवाब देंगे कि ये बात तस्लीम नहीं है कि कौस की जमा पहले अकवास आई और फिर उससे अकवस बना, बल्कि कौस से बराह रास्त क्या बन गया, अकवस बन गया। तो यहां कोई ऐसी सूरत नहीं है दरमियान में जो जाब्ते के मुताबिक हो और फिर नई सूरत बनाई जाए। कहते हैं वह अमल मुगैरात शाजतु, और बाकी जो मुगैरात शाजा हैं, शाज उसको कहते हैं जो इस्तेमाल के एतबार से ठीक है लेकिन कानून के एतबार से ठीक नहीं, यानी कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा, उसको शाज कहते हैं। भाई मैंने आपको बतलाया ये जो सर्फ और नहव के कवानीन हैं ये सारे बाद में बनाए गए हैं, अरबों की जुबान पहले थी वो अरबी बोलते थे लेकिन बाद में कुरान और हदीस की हिफाजत के लिए उलमा ने सर्फ और नहव वगैरह उलूम को बाकायदा ईजाद किया, वजूद दिया, और ऐसे ऐसे कानून और जाब्ते बनाए कि यूं लगता है कानून और जाब्ते पहले थे और अरबी जुबान उसके मुताबिक उसको देखकर बनाई गई। जैसे काला असल में क्या था, कवाला, हालांकि हमने अरबों से आज तक नहीं सुना किसी ने कवाला पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, कवाला पढ़ा हो, हमने तो सिर्फ काला सुना है, लेकिन उलमाए नहव ने अल्लाह ताला उनको अजर अजीम नसीब फरमाए, कितनी आसानियां कर दी। भाई अब देखो काला की असल कवला थी, भाई क्यों असल कवला थी, कहते हैं इसलिए क्योंकि माजी फाला वजन पर आती है बाबे नसारा से, किस वजन पर, फाला, तो ये तो है काला, मालूम हुआ इसकी असल भी क्या होगी, कवला होगी, क्या होगी, कवला। तो इस तरह करके एक एक जाब्ते के मुताबिक उन्होंने एक एक लफ्ज को परखा और जाब्ते के तहत उसको ले आए, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे थे उलमा ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह कानून के अंदर आ जाएं लेकिन वो कानून के तहत नहीं आ रहे, तो उसको उन्होंने शाज करार दे दिया। क्या करार दिया, शाज का ये माना नहीं कि वो गलत हैं, शाज का माना ये है कि हमारे कानून के तहत नहीं आ रहे, हमने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये कानून के तहत आ जाए लेकिन ये कानून के तहत नहीं आ रहा, तो इनको शाज कहते हैं। यानी अरब इसको कौस की जमा अकवस ही बोलते हैं, मालूम हुआ ये इस्तेमाल के एतबार से बिल्कुल ठीक है, अरब पढ़ते ही अकवस हैं, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये कौस की जमा अकवस क्यों आई, कोई कानून अभी तक हम बनाने में कामयाब नहीं हो सके। एक जाब्ता होना जिस पर और भी लफ्ज आए उसके मुताबिक उनमें तब्दीली हो, ऐसा जाब्ता अभी तक हमें समझ में नहीं आया, कोई हम जाब्ता नहीं बना सके। तो अकवस इस्तेमाल के एतबार से ठीक है लेकिन जाब्ते की गिरफ्त में नहीं आ रहा, तो बाई एतबार इसको क्या कहते हैं, शाज कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे देखो आवीरा या अबरू, आवीरा या अबरू, आवीरा या अबरू वह मुतहर्रिक है, माकबल फतहा है, इसको किससे बदलना चाहिए, अलिफ से, लेकिन अरब इसको इसी तरह पढ़ते हैं, तो चुनाचे उलमा फिर फरमाते हैं ये शाज हैं भाई, ये शाज हैं भाई, यानी कानून के तहत नहीं आ रहे। और जबकि बाद फिर कहते हैं कि ये असल मादा पर दलालत करने के लिए इसको बाकी रखा गया ताकि पता चल जाए, अगर इसको आरा पढ़ दिया जाता तो मादे का पता नहीं चलता कि यहां दरमियान में वाव था या थी, तो इसलिए उसको उसकी असल पर बरकरार रखा भाई। तो बहरहाल बाज़ सीगे होते हैं, बाज़ उलमा के नजदीक शाज होते हैं, फिर बाज़ उलमा कोई ना कोई कानून ऐसा बना लेते हैं उसमें तब्दीली करके कि वो शाज भी गैर शाज बन जाते हैं, जैसे इल्म सीगा वगैरह में आपने पढ़ा है, बाज़ वो कवानीन की तकरीर ऐसी फरमाते हैं कि मेरी ये तकरीर ले लोगे तो ये फलां फलां कलीमे का शाज होना खत्म हो जाएगा, वो कानून के तहत आ जाएगा भाई। तो कहते हैं वह अमल मुगैरात शाजतु, और बाकी मुगैरात शाजा जो हैं, फला नुसल्लिमु, तो हमें यह बात तस्लीम नहीं है कि अन्नहा मुखरजतुन अनि सियगिल असलियती, कि ये निकाले गए हैं सियग असलिया से, फइन ज़ाहिर अन्न मिसला अक्वसिन व अन युबिन मिनल जुमुई शाजति, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि अकवस और अनयुब जैसी जो जुमुए शाजा हैं, लैसत मुखरजतन अम्मा हुअल कियास फीहा, इनको निकाला नहीं गया उस सीगे से जो कियास है इनके अंदर, आनी अकवासं व अनियाबन, यानी अकवासं व अनियाबन। जाहिर यही है कि अकवुस और अनियुब को अकवास और अनियाब से नहीं निकाला गया, बल इन्नमा जुमिअ अलकौसु व नाबु इब्तिदाअन अला अकवुसिन व अनियुबिन अला खिलाफिल कियासी, बल्कि कौस और नाब को जमा किया गया इब्तिदाअन शुरू से ही, किस वजन पर, अला अकवुसिन व अनियुबिन, अकवुस और अनियुब के वजन पर, अकवुस और अनियुब पर इनकी जमा बनाई गई शुरू से ही, अला खिलाफिल कियासी, खिलाफुल कियास भाई, खिलाफुल कियास तरीके पर, मिन गैरी अन युअतबरा जमउहुमा अव्वलन अला अकवासिन व अनियाबिन, बगैर इसके कि एतबार किया जाए पहले इनकी जमा जो थी वो अकवास और अनियाब पर थी, व इखराज अकवुसिन व अनियुबिन अनहुमा, और फिर अकवुस और अनियुब को इनसे निकाला गया, ये एतबार यहां नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई जी। तो ये अकवुस मैंने बताया, ये कौस की जमा है भाई, और ये कमान को कहते हैं, तीर कमान। इसी तरह नाब जो है, नाब, नाब ये कचली के दांत को कहते हैं। ये अगर आप देखें, ये चार दांत सामने वाले, इनके साथ जो दाएं बाएं जो दो दांत हैं वो जरा नोकीले हैं, ये ऊपर भी और नीचे भी, ये जो चार नोकीले दांत हैं इनको नाब कहते हैं, कचली वाले दांत। समझ में आया? ये हैवानात में आप गौर करें, कुछ हैवानात जो हैं सब्जी खोर हैं जैसे गाय बैल बकरी वगैरह, और कुछ हैवानात जो हैं गोश्त खोर हैं जैसे शेर कुत्ता भेड़िया वगैरह। जो 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 सब्जी खोर हैवानात हैं उनको अल्लाह ने हमवार दांत दिए हैं, गाय बैल बकरी के सारे दांत हमवार हैं, एक भी दांत नोक वाला नहीं, क्योंकि उनको हमवार दांतों की जरूरत है घास को खाने के लिए, तो अल्लाह ने भी वैसे ही दांत दिए। और गोश्त खोर जानवरों को गोश्त खाने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए उनको नोकीले दांतों की जरूरत थी, तो अल्लाह ने उनको नोकीले दांत दिए भाई। और इंसान को अल्लाह ने दोनों तरह के दांत दिए हैं, इसमें इशारा है कि इंसान सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है। तो ये जो कचली का दांत है नोकदार, इसको कहते हैं नाबुन, और इसकी जमा अनयुब आती है खिलाफुल कियास भाई। हालांकि जाब्ते के मुताबिक जमा क्या आनी चाहिए, अनयाब आनी चाहिए भाई। चलिए बस करें, बस भाई। हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।